जी घर पर एक माइक है वो ले लेना, इसके साथ लगा देंगे तो सबको उस इबारत सुनने में आती है। बाबुन नफ फिस सूरी, सूर फूके जाने के बयान के अंदर। और बाद हजरात ने यहां उन्वान लगाया है किताबु अहवाल कियामती व बदिल खल्की, कयामत के हालात और तमाम मखलूक को दोबारा पैदा किया जाना, और उसकी शुरुआत होगी सूर के फूके जाने से। ये सूर क्या चीज है? नरसंघा, सींग, जैसे कि गाय का सींग होता है, बैल का सींग होता है, एक तरफ से नौकीला दूसरी तरफ से चौड़ा, वो सींग नरसंघा ये। और इसके अंदर तुम फूक मारो तो बुलंद आवाज निकलती है, बुलंद आवाज उसकी वजह से हो जाती है। रहा नफख, किसको कहते हैं? नफख के माने आते हैं मुंह में से जोर से हवा निकालना, कि कोई आदमी अपने मुंह में से जोर से हवा फूके उसको नफख से ताबीर किया जाता है। और सूर फूके जाने से मुराद यहां पर ये लिया जाता है कि अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े फरिश्ते हैं हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, जब से दुनिया पैदा हुई तब से उन्होंने अपने मुंह में सूर रख लिया है और अल्लाह के हुक्म के इंतजार में खड़े हुए हैं, कान अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कि कब अल्लाह हुक्म देवे और मैं फूंक दूं। रिवायतों में आता है कि जो हिस्सा हजरत इसराफील के मुंह के साथ लगा हुआ है वो कितना है? का सातों जमीन और सातों आसमान के बकदर है। और हम सब जानते हैं कि फूंके जाने वाले सूर में मुंह से जो हिस्सा लगता है वो छोटा होता है और आगे वाला जो हिस्सा होता है वो बड़ा हुआ करता है। तो जो हिस्सा इसराफील के मुंह के साथ लगा हुआ है उसकी गोलाई सातों आसमान और सातों जमीन के बकदर है, तो आगे वाला हिस्सा तो कितना बड़ा होगा अंदाजा लगाओ। बाज रिवायतों में आया कि जो आगे वाला उसका हिस्सा है दायरा जिसमें से आवाज निकलेगी उसमें तमाम इंसानों की रूहें रखी हुई है, सबकी रूहें वहां रखी जाती है। और ये फूक मारेंगे तो सारी रूहें उड़ेगी और उड़ करके वो जो बदन उगे कब्र में से उसमें जाकर पेवस्त हो जाएगी और दाखिल हो जाएगी। तो अंदाजा लगाओ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले इंसान और आदम अलैहिस्सलाम से पहले से लेकर कयामत तक आने वाले जिन्नात और जमीय जानवर उनकी अरवाह जब उनके सूर के दहाने पे रखी होगी तो वो दहाना कितना बड़ा होगा, और जब ये उसमें से हवा डालेंगे तो वो उड़ करके जो है सब जी रूह के बदन में जाकर के वो रूह दाखिल हो जाएगी। अब ये सूर कितने हैं? तो बाद हजरात तीन की तरफ गए हैं कि तीन मर्तबा सूर फूंका जाएगा। नंबर एक, وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سورة نمل میں اس کا نام ہے نفخ فزع، یعنی اس سور کے اوپر تمام مخلوق گھبرا اٹھے گی، ڈر جائے گی۔ نمبر دو، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سورة زمر میں इसको नफ़खे सईक कहा जाता है। इस सूर के ऊपर तमाम जीरू की मौत हो जाएगी। नंबर तीन, नफ़खतुल बास के जिस सूर के ऊपर तमाम जीरूह दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे। वनुफिखु फिस्सूरि फइज़ाहुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। दूसरी जगह फइज़ाहुम क़ियामुन यंज़ुरून। ये तीन सूर है और बाद हजरत ने पहले नफ़खे फ़ज़ा और नफ़खे सईक दोनों को एक करार दिया तो लोग दो सूर के कायल हुए। बहरहाल तीन या दो सूर कयामत के दिन फूके जाएंगे, एक दुनिया को खत्म करने के लिए और एक दुनिया को जो है दोबारा जो है फिर से पैदा करने के वास्ते। अब बाद हजरत ये कहते हैं कि सूर के फूके जाने के ऊपर चंद मुस्तस्नियात है कि उनको मौत नहीं होगी या उनको बेहोशी नहीं होगी। नंबर एक, जन्नत के हूरो गिलमा। नंबर दो, जन्नत के निज़ाम को संभालने वाले फरिश्ते। नंबर तीन, हमलत अर्श। नंबर चार, शोहदा। नंबर पांच, हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम। और ये बड़े बड़े फरिश्ते जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, इज़राइल का इन हजरात को मौत नहीं आएगी, ये लोग बेहोश नहीं होंगे। लेकिन जुम्हूर ये कहते हैं कि अखीर में सही, बगैर बेहोशी के सही, इनको भी मौत आने वाली है और फिर अल्लाह ताला इनको जल्दी पैदा भी फरमा देंगे। इसीलिए कि वो जो ऐलान है लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार का, तो ऐसे वक्त के अंदर होगा कि जब उस ऐलान का कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, कोई नहीं होगा, तब अल्लाह ऐलान करेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम। फिर कोई जवाब देने वाला है ही नहीं कि जवाब देवे, तो खुद बारी ताला जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। इस तरीके से होगा जी। वो तो मालूम है ना कि हजरत मूसा अलैहि सलाम का इस्तिस्ना क्यों? अरे वो तूर पर बेहोश नहीं हुए थे? फलम्मा तजल्ला रब्बुहु जालहु वखर मूसा सईका, तो दुनिया में एक मर्तबा हो चुका है और किसी को डबल मर्तबा बेहोशी अल्लाह के आने वाली नहीं। इसलिए चलो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोनों सूर के फूके जाने के दरमियान की मुद्दत 40 होगी। अब शागिर्दीन पूछ रहे हजरत अबू हुरैरा को, हजरत 40 क्या दिन? हजरत अबू हुरैरा ने कहा मुझे मालूम नहीं। शागिर्द ने कहा हजरत 40 महीने? हजरत ने फरमाया नहीं मुझे मालूम नहीं। शागिर्द ने कहा हजरत 40 साल? फरमाया मुझे मालूम नहीं। ये एहतियात है रिवायत के मामले के अंदर। बाद हजरत ये कहते हैं कि उन्होंने मुजमल सुना था इसलिए इन्होंने वजाहत नहीं फरमाई। नंबर दो, मुफस्सल सुना था लेकिन भूल गए इसीलिए कहा कि अबू अबैतु। यानी मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, या ये कि मैं जवाब नहीं बतला ना पा रहा हूं कि भाई कितना फरमाया था। दूसरी रिवायत से अंदाजा होता है कि अरबाउन सनतन मुराद है। तुम युनज़िलुल्लाहु मिनस समाई माआ फिर 40 साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे और उस बारिश की बरकत से इंसान उगेंगे कब्रों से, जैसे कि सब्जी उगती है बारिश के पानी से इंसान उगेंगे। वलैस मिनल इंसान शय उल्ला यबला, और इंसान में से हर एक इंसान गलसड़ के खत्म हो ही जाता है। लायबला, जो भी इंसान मरा दफन हुआ गल सड़ के खत्म, वो हर हर इंसान का यही मामला है। मिनल इंसानी शय, यानी हर इंसान की हर हर चीज गल सड़ के खत्म हो जाती है। इल्ला अजमन वाहिदन, मगर एक हड्डी हर इंसान की बाकी रहती है। वहुवल अजबु जम्बी, और वो रीढ़ की हड्डी की आखिरी, ये रीढ़ की हड्डी है ना करोड़जू, उसकी जो आखिरी हड्डी है वो हड्डी जो है ना इतनी सी है एक पोर्वे के बकदर, और वो थोड़ी सी नौकीली है, वहां हाथ लगाकर हर आदमी महसूस कर सकता है। रीढ़ की अखीर वाली हड्डी जहां रीढ़ जाके खत्म हो जाती है, उसका नाम है अजबुज़म। और शुरा लिखते हैं कि अजबुज़म का मामला बड़ा अजीब है कि सबसे पहले इंसान की हड्डी में वही पैदा होती है रहम मादर में, और अखीर तक वही बाकी रहती है, बाकी पूरा बदन गल सड़ के खत्म, और उसी हड्डी के जरिए से अल्लाह ताला जो है पूरे इंसान को दोबारा पैदा करेंगे। बास किरात में मीम के साथ आए अजमुज़म्बी, यानी रीढ़ की हड्डी की असल हड्डी नीचे वाली। वमिन्हु युरक्कबुल खल्क यौमल क़ियामा, और उसी से अल्लाह ताला तमाम मखलूक को कयामत के दिन दोबारा पैदा करेंगे। ये भी बहुत बड़ी कुदरत कामिला है ना कि एक हड्डी में से पूरे इंसान को अल्लाह दोबारा पैदा फरमावे। बाद हजरात फरमाते हैं कि तूल मुराद है कि भाई ये अजबुज़म देर पा होती है, और बास कहते हैं कि हमेशा बाकी रहती है अजबुज़म, उसके अंदर से पूरे इंसान को कयामत के दिन अल्लाह ताला दोबारा पैदा करेंगे। और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में यूं आया कि हर इंसान को मिट्टी खा जाती है, अंबिया मुस्तस्ना, शोहदा मुस्तस्ना, बाज़े औलिया भी मुस्तस्ना, कि अल्लाह ताला ने कब्र की मिट्टी को हराम कर दिया है कि वो अंबिया और शोहदा की नाश को खा जावे, उनकी नाश कब्रों में सही सालिम रहती है। इल्ला अजबुज़म भी, मगर अजबुज़म मिनहु खुलिका, उसी से इंसान पहली मर्तबा पैदा हुआ। वफी ही युरक्कब, और उसी से कयामत के दिन दोबारा इंसान तरकीब दिया जाएगा, यानी दोबारा पैदा किया जाएगा। जी और उन्हीं से ये रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला कयामत के दिन तमाम जमीन को अपने पंजे में ले लेंगे, तमाम जमीन को अल्लाह कयामत के दिन अपने पंजे में ले लेंगे। अब क्या कैफियत होगी, मतलब है कि पूरी जमीन, जैसे आदमी क्या कहे कि फूला जगह वो तो मेरी मुट्ठी में है, हालांकि आदमी जानता है कि तेरी मुट्ठी इतनी नहीं, वो तो इतनी बड़ी, लेकिन उसका मकसद क्या होता है कि मुझे उसके ऊपर कामिल कब्जा और कुदरत और तसर्रुफ हासिल है, तो ये काम तो मेरी मुट्ठी में है, दाहिने हाथ की मुट्ठी में, जब चाहे तब कर डालो। तो इसकी यही मुराद लेना ज्यादा बेहतर है कि तमाम जमीन को अल्लाह ताला कयामत के दिन मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले लेंगे, अपने तसर्रुफ में ले लेंगे, अपने पंजे में ले लेंगे। और आसमान को अल्लाह ताला अपने दाहिने हाथ में ले लेंगे, दाहिने हाथ में ज्यादा शराफत और अजमत है इसीलिए फरमाया। तो जमीन आसमान सब अल्लाह की मुट्ठी में, अल्लाह के कब्जे कुदरत में हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला ऐलान करेंगे अनल मलिक, मैं ही बादशाह हूं, अइना मुलुकुल अर्थ, जमीन के बादशाह लोग कहां गए, यानी जो दुनिया में अपनी बादशाहत का जिनको बहुत गुरूर था, आज कहां है वो सब बादशाह लोग? आज सारी बादशाहत मेरे कब्जे कुदरत के अंदर है। ये अल्लाह ताला कयामत के दिन ऐलान फरमाएंगे। कुरान में भी है ने कि वल अर्दु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून वमा क़दरुल्लाह हक़ क़द्री वल अर्दु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामा। ये आयत, यही आयत है ना पूरी, तो ये आयत की तरफ इस हदीस के अंदर इशारा है। इसके अंदर अल्लाह की अजमत की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला की अजमत कितनी अजीम है और अल्लाह ताला जो है कितने अजमत और बड़े मकाम वाले हैं। बाद हजरात ये कहते हैं कि जिस काम को दुनिया के लोग बड़ा समझते हैं अल्लाह के लिए वो बहुत आसान है। अब सारी जमीन और सारे आसमान को एक मुट्ठी में लेना, ये इंसान के लिए कितनी बड़ी चीज। अरे एक खेत आदमी अपनी मुट्ठी में नहीं ले सकता, तो सातों आसमान सातों जमीन को इंसान अपनी मुट्ठी में ले लेवे कितनी बड़ी चीज, लेकिन अल्लाह के लिए एकदम मामूली और हल्की फुल्की चीज होगी, निहायत आसान चीज होगी, कोई गिरानी नहीं होगी। देखो मुफस्सिरीन ने लिखा है इस आयत के ऊपर कि जो आदमी सफर में जावे तो ये आयत पढ़ लेवे दूसरी दुआओं के साथ, तो अल्लाह ताला उसको सफर में हिफाजत से रखेंगे। वमा कदरुल्लाह हक्क कदरी वल अर्दु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून। सावी मालूम है ना आपको, सावी, चावी नहीं, सावी। जलालेन की एक शरह का नाम है सावी, हाशियतुस सावी, उसमें यह अमल लिखा हुआ है। चलो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कयामत के दिन तमाम आसमान को लपेट लेंगे, फिर उनको अपने दाहिने हाथ में ले लेंगे। देखो एक चादर खुली हुई हो फिर तुम लपेट दो तो फिर उसको हाथ में लेकर आदमी चल लेता है, तो ये आसमान की जो पूरी कायनात फैली हुई है ना, अल्लाह कयामत के दिन उसको लपेट देंगे। जैसे दुकान जो रास्तों पर होती है, कपड़ा डाला, चार खंभे लगाए और दुकान खोल दी, शाम हुआ कपड़ा लपेटा, लकड़ी ली और दुकान उठा के चले, तो ये कायनात भी एक दुकान की तरह है। सातों आसमान खुदा ने फैलाए, कयामत के दिन उसको लपेट के रख देंगे अल्लाह ताला, और फिर उसको अपने दाहिने हाथ में ले लेंगे और ऐलान फरमाएंगे कि मैं बादशाह हूं। कहां है दुनिया के वो जब्बार और जुल्म करने वाले बादशाह लोग, कहां है वो जो दुनिया में बहुत तकब्बुर करते थे, वो लोग कहां है? फिर अल्लाह ताला तमाम जमीनों को बाएं हाथ में ले लेंगे, और एक रिवायत में है कि जमीनों को अल्लाह ताला बाएं हाथ में ले लेंगे, आसमान दाएं हाथ में और जमीन को बाएं हाथ के अंदर। इससे आसमान की फजीलत साबित हुई इस रिवायत से। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, अनल मलिक, मैं ही बादशाह हूं। कहां ये जब्बार लोग, कहां ये तकब्बुर करने वाले लोग? बाज लोगों ने तब्दीली भी मुराद ली है, क्या आसमान और जमीन सारे बदल दिए जाएंगे? आगे रिवायत में आ रही उसकी मजीद वजाहत कि इस वक्त का आसमान आसमान नहीं रहेगा, कयामत के दिन दूसरा आसमान होगा सोने का, और इस वक्त की जमीन जमीन नहीं रहेगी, कयामत की जमीन चांदी की होगी। चलो ثم يقول الزهر فيقول انا الملك انا الله فضيق رسول الله صلى الله عليه وسلم
تصديقا له ثم قرأ وما فرق بدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون متفق عليه.
یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. حبر اور ہبر دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے, اور یہ لفظ یہودی عالم کے لیے بھی اور یہودیوں میں جو نیک اور صالح لوگ گزرے ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے, دونوں کے لیے. دراصل مدینہ میں یہودیوں کی آبادی بہت بڑی تھی اور وہ تورات اور انجیل کے عالم لوگ تھے, اسی لیے وہ کبھی کبھی حضور کے پاس آتے تھے. اسی لیے کہ اندر کھانے تو وہ جانتے تھے کہ یہ نبی سچے ہیں اور ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے, یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے ہیں اور ان کا قرآن بھی تورات جیسا ہی ہے, اندر اندر تو جانتے تھے. اسی لیے کبھی کبھی باتوں کو ملانے کے لیے آتے تھے کہ تورات میں جو بات لکھی ہے ان کے یہاں بھی وہی بات ہے, ہماری نبی کی وحی میں جو بات ہے وہی ان کی وحی میں بھی ہے. اس طرح ملانے کے لیے وہ آیا کرتے تھے, کمپیر تقابلی مطالعے کے لیے آتے تھے. تو آیا ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو قیامت کے دن ایک انگلی کے اوپر اٹھا لیں گے اور تمام زمینوں کو ایک انگلی پر, تمام پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر, اور تمام پانی اور نمناک مٹی کو ایک انگلی پر. سرا کس کو کہتے ہیں؟ انہ یعلم ال, سورۃ ہم ہے نا پانچویں یا چھٹے نمبر کی آیت میں, وما تحت السرا. تو سرا کس کو کہتے ہیں؟ زمین کھودو 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 نیچے جاؤ تو نیچے جانے کے بعد بھیگی مٹی نکلتی ہے پھر پانی آتا ہے, تو اس بھیگی مٹی کو عربی میں سرا کہا جاتا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ پانی کو اور بھیگی مٹی کو ایک انگلی پر اٹھا لیں گے اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھا لیں گے, ثم یحزن, پھر ان تمام کو اللہ تعالیٰ ہلائیں گے. یاد رکھنا یہاں جتنا بھی انگلی کا تذکرہ آیا ہے نا حدیث میں, یہ بطور تمثیل ہے, کنایہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظمت غلبہ اس کی تصویر کشی کی گئی ہے. جیسے کہ آدمی کہتا ہے نا کہ بھائی یہ تو میں تھی انگلی پہ اٹھا لو, بعض لوگ ایسے ڈنگے مارتے ہوئے بولتے ہیں کہ اینٹ, وہ چیمپئن لوگ بولتے ہیں نا کہ پوری اینٹ ایک انگلی پہ اٹھا ڈالو میں, تو اس طریقے سے. تو یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظمت اللہ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی قوت کو ایک شکل صورت میں بیان کیا گیا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی کے اوپر اٹھا لیں گے, یعنی اللہ کے لیے سب چیز معمولی ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے نہایت آسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہلائیں گے, فیقول, اور ہلا کے فرمائیں گے, ان الملک ان اللہ, میں ہی مالک ہوں میں ہی اللہ ہوں. یہ اس یہودی عالم نے حضور کو سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اس کی بات کے اوپر. اور حضور کیوں ہنس دیے؟ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے کہ اس نے جو بات کہی وہ بعینہ وہی ہے جو حضور پر آنے والی وحی میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کے اندر بھی بعین ہی وہی باتیں ہیں. پھر اس عالم کو, یہودی عالم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھ کر کے بطور تائید اور تصدیق کے سنائی.